महाराज की असीम कृपा से, उनकी दया से हम सब इसमें सम्मिलित हुए हैं। हे सद्गुरुनाथ महाराज, गुरुदेव रामभव महाराज की पुण्यतिथि पर प्रथम दास बोध सुधा का पठन हो रहा है। हे महाराज, आप समर्थ हैं प्रभु हमारे अपराध क्षमा करना। हे करा ते करा, ब्राह्मण भोजन घाला, तीर्थाटन करा, त्यामुळे तुमच्या मनातील इच्छा फलद्रुप होतील। असे आपल्या बुद्धीनानुसार जे सांगतात त्यांना गुरु समजून लोक त्याच्यावरती विश्वास ठेवतात, ते काही सद्गुरु नव्हे। ये लिंगप्पा असे म्हणत हातात लिंग आलेले दाखविणारे ज्ञानी नव्हे असे महाराज सांगत असत।
शिवलिंग बनाते हैं, उसकी पूजा करते हैं और उसका विसर्जन करते हैं, ये कोई सचमुच का नहीं है। यह जो कॉलम ऑफ लाइट, जो प्रकाश का बिंब आपके सामने आता है, उसका प्रतीक मात्र है, ऐसा महाराज ने अपने शिष्यों को समझा चुके।
एकाग्रस्ताने पाण्यावर धोतर टाकून त्याच्यावर चालून नदी पार केली।
एक शिष्य था किसी गुरु का, उसने एक अपनी धोती जो है तो जो बह रही नदी थी उसके पानी पर रखी और उस पर चल करके नदी पार की।
हे पाहुन निंबर्गी महाराजांचा एक शिष्य, आमचे गुरु काही कमी नाही।
तो वहाँ पर निंबर्गी महाराज का एक शिष्य भी उपस्थित था, उसने कहा रे हमारे गुरु भी कोई कम नहीं है।
असे म्हणून पाण्यावर धोतर टाकून त्यावर बसून नदी ओलांडून गेला।
तो उसने क्या किया कि नदी के पानी के ऊपर अपनी धोती बिछाई, कुछ उसके ऊपर बैठ गया और इस तरह से उसने भी नदी पार कर ली।
नंतर तो आपल्या गुरुकडे जाऊन म्हणाला।
तो वह शिष्य फिर निंबर्गी महाराज के पास आता है और कहता है देखो महाराज, ये इस तरह का काम मैंने किया, एक आदमी इस तरह से अपने बातें बना करके बताता था कि मेरा गुरु बहुत बड़ा है, मैंने उसको बता दिया कि हमारा गुरु कितना बड़ा है।
तुमचा महिमा थोड़ा है।
तो निंबर्गी महाराज ने कहा आपकी महिमा तो बहुत बड़ी है, आप बहुत बड़े
हैं। एवा निंबर्गी महाराज म्हणाले, तू माझे नाव घेतल्याने तुला खाद्यावर वाहून न्हावे लागले।
तो उन्होंने कहा रे मूर्ख निंबर्गी महाराज, के मूर्ख तूने मेरा नाम लिया था इसलिए मुझे तुमको अपने कंधे पर उठा करके और उस नदी से ले जाना पड़ा था, तुझे पता है क्या?
हे बग,
और देखिए मेरे हाथ,
माझे हाथ खरच टले,
और ये है ना इसके ऊपर तुमको उठा करके ले जाने के कारण खुर्चन पड़ गई है।
कांबल ओड़म झालम आहे,
और ये कंबल जो था मेरे ओढ़ने के लिए ये भीग करके बिल्कुल ऐसे हो गया है।
गड़ा माल चिड़ा टोपी मणती आमी साधु,
तो गले में माला डालते हैं, सिर पर टोपी लगाते हैं और कहते हैं कि हम भी साधु हैं।
दया धर्म नाई कितनी जाना वे भोंदू,
तो लेकिन ये गले में माला डाल करके और जो सर पे टोपी डाल करके अपने आप को साधु कहते हैं, उनके मन में न दया है न धर्म है, उनको साधु कैसे करना चाहिए।
वाचुन पढ़ून सहाणे झाले मनती आमी संत,
और कुछ लोग ऐसे हैं जो इधर से किताबें पढ़ती है उधर से किताबें पढ़ती है, उन पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करके और कहते हैं कि हम भी संत हैं।
वर नारी देखो निया संचल झाले चित्त,
लेकिन उन लोगों का चित्त जो है और स्त्री को देख करके चंचल हो जाता है, वो साधु कैसे हो सकता है।
कलयुगी घरो गरी संत झाले फा,
इस कलयुग में यह विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई है कि जिस घर में देखो उस घर में संत इकट्ठे हो गए हैं।
वीत पर कोटा साटी हिंदती दारो दा,
और ये संत कहते हैं कि पेट भरने के लिए घर घर भीत मांगने के लिए जाते हैं।
ऐसे तुकाराम महाराजा ने मटले आए,
ऐसा तुकाराम महाराज ने अर्जुन कहा,
सुलले हवेश भंदु साधु रदु अवर नरेल बयाडो, भंदु साधु चा हवास धरु नकोस,
इसलिए कहा है कि ऐसे साधु जो है वो भंदु है, इनकी पास जाकर के ज्ञान प्राप्त करने की आशा रखना भूल होगी, नहीं रखना चाहिए।
एक खोटे आए,
ये लोग गलत मार्ग पर ले जाने वाले हैं, ये असत्य हैं, झूठे हैं।
जानकी सावली सुद्धा नको रे,
उनके पास किसी भी तरह से कोई संबंध हमारा बना रहना ही नहीं चाहिए।
ये पद महाराज वर्चे वर मनुन घेत,
और इस पद को भावसा महाराज कई बार अपने शिष्यों को पढ़कर सुनाते थे।
एकदा महाराजा बरोबर प्रवास करत असलेले बाळव्याचे कन्नूरचे हनुमतराव काकड आरतीला ठवले नव्हेत।
एक बार काकड आरती के समय भावसाहब महाराज स्थान स्थान पर जाते थे और शिष्यों को उनके परमार्थ में उत्साहवर्धन करते थे, तो एक बार उनके साथ हनुमतराय नाम के एक शिष्य थे।
महाराजानी धोतरला पीळ घालून त्याचा लड्डू तयार करून त्याने हनुमंतरावाना फटका मारून उठविले।
हनुमंतराय काकड आरती हो रही थी तब वो सोया ही रहा, तो महाराज ने ऐसे ऐसे गोटी लेकर के गांठ लगाई गोटी को और गांठ लगा कर उसका फटका मारा हनुमंतराव को जोर जोर से और उसको जगाया।
जोक्षा गुंजित असलेले हनुमतराव परत जोगले,
तो लेकिन हनुमतराय भी बात करते उनको दो चार लगे तो वैसे उठे एक बार और फिर वापस उठे।
महाराजा ने पुनः त्याना उठ भी ले,
तो महाराज ने उसको फिर एक बार उठाया।
का रे नाम घेतले,
उन्होंने कहा कि रे तूने गुरु से नाम लिया है,
नेम काकड आरती सोडून जोपता,
और न तो तू नेम करता है न काकड आरती करता है, केवल मात्र नींद ही नींद लेता है,
असे म्हणून त्याना रागवाळे,
और ऐसा कह करके उस पर बाबूसाहेब महाराज मुकुंद हुए। अर्थ यह है कि अगर महाराज से हमने नाम लिया है तो हमारा यह कर्तव्य हो जाता है कि हम भी उसी तरह से नियम साधन कर। जो इस प्रकार विषयों का दास हो गया है, मैंने विषय माने अलग अलग आंखों से देखना, विषय की वस्तुओं को देखना, मुंह से पढ़ना, कान से सुनना, उनका जो दास हो गया है वो आगे जाकर भक्तराज कैसे बन सकता है।
ऐसे महाराजा ने आपल्या एक पत्रात विचारले आहे.
ऐसा उन्होंने एक पत्र में एक शिष्य को लिखा था.
Is all in all, one would like to know what exactly is Professor Ranade's idea regarding the mutual relations of name, form, under it come the various spiritual experiences, namely the textual, visual, auditory, gustatory and the olfactory, and mental disposition or devotional attitude, naam, roop and bhav.
पहली आवश्यकता है रूप के बाद जागृत के नाम के, उसके बाद में उस नाम को रखना आदान करना ईश्वर का रूप होता है वो दिखाई देना और ईश्वर के रूप को देख करके और उस साधन के मन में नाना प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं. जब वो सुंदर सौम्य रूप देखे तो प्रेम का भाव उत्पन्न होता है, विकराल रूप देखे तो गाय होता है, ऐसे अनेक प्रकार के भाव होते हैं. तो यह वाक्य परमात्मा के लिए मनोवाद और भाव ये तीनों अत्यंत महत्वपूर्ण है. यहाँ पर डॉक्टर साहब ये कहना चाहते हैं कि प्रोफेसर आनंद साहब के मतानुसार इन तीनों में बात कर समझ क्या
A mere intellectualist might say, and no doubt quite correctly also, that whereas roop is important metaphysically, naam is important epistemologically, while bhav is the result of naam and roop taken together.
तो जिसको केवल मात्र बौद्धिक ज्ञान है वो ये कहेगा कि ईश्वर सर्वत्र विराजमान है, वह सभी जगह है, लेकिन जो सचमुच ईश्वर सब जगह है ऐसा आंखों से देखना चाहता है, जो जानना चाहता है, उसके लिए ये आवश्यक है कि वो नाम लेगा. तो एपिस्टेमोलॉजिकली ज्ञान प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है नाम. और जब वो एक और तो नाम दूसरी तरफ हो रूप तो भाव उत्पन्न होता है, ये दोनों साथ में. तो ये बात जो वो कहता है बौद्धिक रूप से वो सही है, लेकिन केवल मात्र पुस्तकीय ज्ञान है, ये उसने खुद ने नहीं देखा है.
Ranade would say that naam is greater than roop because unless one meditates there will be no manifestation of roop, and unless there is the revelation of the visions, sounds, touch in presence of God there would be no emergence of bhav, that is of the feeling of love, reverence, fear, awe and dependence for the most sublime and beautiful face of God.
रामबाबू महाराज का मत ये था, विचार ये था कि जो वो नाम है वो रूप से अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि आपको यह नाम नहीं मिला है और नाम का सतत स्मरण आपने नहीं किया है तो आपके सामने कभी भी रूप प्रकट नहीं होगा, और अगर यह रूप प्रकट नहीं होगा तो रूप को देख करके मन में जो नाना प्रकार के भाव उत्पन्न होने की संभावना रहती है वो उत्पन्न नहीं होंगे. हमने देखा है कि गीता में जब श्री कृष्ण ने विश्व रूप धारण किया तो अर्जुन ने उस विश्व रूप को देखा और उसका सौम्य सुंदर रूप देखा तो आनंद से हर्षित हुए, लेकिन उसके तत्काल बाद में जब उन्होंने विकराल रूप देखा तो भय से काम रहे. तो ये भाव जो उत्पन्न होते हैं वो जब तक रूप नहीं देखा जाए तब तक ये भाव उत्पन्न नहीं होते हैं. इसलिए यानी अगर नाम नहीं मिलेगा तो न तो रूप प्रकट होगा और न भाव उत्पन्न होगा. इसलिए इन दोनों में से सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि गुरु के द्वारा दिया गया नाम है और उस नाम का सतत स्मरण करना.
And what after all would be our metaphysical view of reality except that which is observable by our epistemological telescope.
ईश्वर वैसा है, ईश्वर वैसा है, तरह तरह का वर्णन यानी अपने किताबों में मिलता है देव को, यानी देव सौम्य है, सुंदर है, विकराल है, भयावह है, लेकिन जब तक आप खुद आंखों से नहीं देख लेते हो उसको, तब तक इन पुस्तकों से पढ़ा हुआ जो रूप वर्णन है उसका क्या लाभ है आपको? कोई लाभ नहीं.
And how can there be any emotional reactions unless what we observe through the telescope strikes our intuitive eye as something uniquely grand, sublime, beautiful, and inspiring awe and love?
और जब तक यह रूप प्रकट नहीं होगा तब तक आपको यह भी पता नहीं लग सकता है कि अब तक जो देव के रूप का वर्णन आपने जगह जगह पढ़ा है उससे कितना भिन्न, कितना अलग, कितना भव्य, कितना सुंदर, कितना भयावह ये ईश्वर का रूप होता है. तो यह रूप प्रकट होना चाहिए तभी ये आपके मन में भाव उत्पन्न होंगे.
एंड अगेन एज इफ इन द साइक्लिक ऑर्डर, इफ देयर इज नो इमोशनल वार्म्थ, नो डिवोशनल ज़ेस्ट एंड फर्वर, देयर कैन नॉट बी मेडिटेशन ऑन द नेम, नॉट एनी ग्रोथ इन अवर इल्यूमिनेशनल पार्टिसिपेशन इन द नेचर ऑफ द डिवाइन लाइफ.
तो यदि मान लीजिए कि आपके शरण में ये रूप प्रकट हुआ ही नहीं है, मन में भाव उत्पन्न हुआ ही नहीं है, तो आपका मेडिटेशन जो है वो भी उच्च कोटि का नहीं. और जब तक ये मेडिटेशन उच्च कोटि का नहीं होता है तब तक उस ईश्वर की देव की महिमा में आप जो हिस्सा बताते हैं वो हिस्सा बताना भी नहीं. माने कहते हैं ये है टू नो गॉड टू बिकम गॉड. ईश्वर को जानने का अर्थ यही है कि आप ईश्वर रूप बनते जाते हैं. तो जितने जितनी सीमा तक आप ईश्वर को जानते हैं उतनी उतनी सीमा तक ईश्वर बनते हैं और उतनी उतनी सीमा तक ईश्वर की शक्ति आप में आती है. तो यह शक्ति नहीं आएगी ऐसा कर मेरा बोलना हो.
जीवन सुधा प्रसंग में जैसी गंगा वाहे में से
सीमा
था
जीवन की कुछ घटनाओं का उनकी जो पुत्री है शुभा जैसी गंगा वाहे उसमें वर्णन किया था. उसके कुछ बाद मैंने हिंदी में पिछले साल जब ये पुण्य तिथि चल रही थी जोधपुर में जब अनुवाद किए थे तो उसमें से कुछ बात पढ़ के सुनाई.
इकलौती पुत्री शकुंतला रानडे विजया विश्वनाथ आपटे ने रामभो महाराज के चरित्र पर एक पुस्तक लिखी है जैसी गंगा वाहे. इस पुस्तक की विशेषता यह है कि रामभो महाराज जैसे महान संत अपने घर में प्रतिदिन के जीवन में किस प्रकार व्यवहार करते थे का वर्णन किया है. उसमें से कुछ चुने हुए उद्बोधक प्रसंग पुण्यतिथि के अवसर पर पढ़ना अप्रासंगिक नहीं होगा. रामभो महाराज का द्वितीय विवाह सीताबाई रानडे के साथ हुआ था. रामभो महाराज की तेजस्विता और अलौकिकता उनके लिए सर्वथा नवीन थी. अतः उन्हें प्रारंभ में रामभो महाराज के विशाल व्यक्तित्व से समरस होना कठिन प्रतीत होता था. तब भावसाहब महाराज की एक वरिष्ठ शिष्या शिवलिंगवा ने एक दिन उन्हें इस प्रकार समझाया.
शिवलिंगवा ने सीताबाई रानडे को ये समझाया.
सीताबाई तू अभी छोटी है, राम राया अत्यंत महान है. उनकी महानता का ठीक ठीक आंकलन अभी जगत को है नहीं. तुमको भी उनकी महानता क्षण क्षण समझ में आने लगेगी. उनकी प्रकृति नाजुक है. श्री भावसाहब महाराज ने तुमको नाम देकर उनके लिए ही भेजा है. इसलिए चिंता करो मत, मात्र उनकी सेवा करो. उनकी सेवा में ही तुम्हारा कल्याण है.
जब वह राम बाब महाराज की तेजस्विता से भयभीत रहने लगी.
एक रात को 5-6 व्यक्ति रेलगाड़ी से आए और निम्बाल स्टेशन पर उतर गए. रात के 11 बजे थे. ये वास्तव में कहीं से भाग कर आए हुए चोर थे। यदि कुछ मिलने की संभावना हुई तो रामबाबू के घर में चोरी करेंगे, नहीं तो आगे चले जाएंगे, ऐसा उनका विचार था। उस दिन बहुत रात गए तक कोई कुछ पढ़ रहा था और रामबाबू महाराज सुन रहे थे। बाहर कुछ लोगों को बातचीत करते सुनकर रामबाबू महाराज ने गुंडप्पा को जोर से पुकारा, इधर आना रे, वहाँ क्या चल रहा है?
ये चोर बाहर बातें करते थे तो उनको अंदर सुनाई दिया रामबाबू महाराज को। उनको क्या पता था आधी रात के बाद में भी लोग जानते और काम करते हैं। तो रामबाबू महाराज ने कहा, बारे क्या चिंता, मैं क्या चर्चा हो रही है देख तो।
गुंडप्पा अंदर आया और उसके पीछे पीछे वे सभी व्यक्ति भी अंदर आए, परंतु सामने सदैव देव का दर्शन कर वे लोग भयभीत हो गए। तभी रामबाबू महाराज ने पूछा, तुम कौन हो, कहाँ कैसे आए हो, बहुत दूर से आए हो क्या? और फिर माता जी को कहा, अरे इनको कुछ खाने को तो दो। रात के 11 बजे माता जी ने भाकरी बनाई, आमटी बनाई व चटनी देकर उन्हें भोजन कराया। चोरों ने भोजन किया, तृप्त हो गए। फिर वे रामबाबू महाराज के सामने मस्तक टेक कर आंसुओं के भरे नेत्रों से महाराज हमें क्षमा कीजिए कहा, और ऐसा कहकर उनके पाँव में गिर पड़े। रामबाबू महाराज ने कहा, क्षमा करने वाला मैं कौन, श्री महाराज ही तुम्हें क्षमा करेंगे। अभी तुम लोग जाओ, ऐसा कहकर उन्हें विदाई दी।
जितने आगे पुलिस वाले पीछे।
तभी एक आध घंटे के बाद रेलवे पुलिस के आदमी आए और पूछा, यहाँ कोई चोर आए थे क्या? रामबाबू महाराज ने इतना ही कहा, कुछ लोग आए अवश्य थे, परंतु अब तो वे चले गए। एक कमरे में कुछ आवश्यक कार्य कर रहे थे। माताजी सभी लोगों के लिए चाय बना रही थी। मैं छोटी ही थी, गाने बजाने लगी। बाबा ने 2-3 बार कहलवाया, शकुंतला को चुप रहने को कहो, परंतु बाल स्वभाव के अनुसार मैं वैसे ही गाती बजाती रही और शांति भंग करती रही। जब यह शोरगुल सहन नहीं हुआ तो बाबा अंदर आए और क्रोध से बोले, चुप रहने को कहा है, सुनती नहीं हो क्या? कितना महत्वपूर्ण काम चल रहा है, तुम्हारी समझ में नहीं आता क्या? ऐसा कहते हुए उन्होंने एक चपत मेरे गाल पर लगा दी। माताजी इससे रुष्ट हुए और कहा, इतनी छोटी सी बच्ची को क्या मारते हो? बस यह सुनना था कि बाबा वहाँ से फिर अपने कमरे में चले गए, कुछ बोले नहीं और अपने काम में व्यस्त हो गए, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। परंतु इस घटना के बाद वे न तो मुझसे और न माताजी से विशेष बोलते थे। ऐसा 1-1.5 महीने तक चला। हमें बहुत बुरा लगने लगा, हम दुखी हो गए। अंत में माताजी ने भागु आका दामले को जो कुछ हुआ था उससे विस्तृत वर्णन करते हुए एक पत्र लिखा।
वही सर्विस कर
भागु आका निम्बाल आई और उन्होंने बाबा से कहा, अरे रामू, तू सीता बाई पर क्रुद्ध हुआ तो तुम और वो जानो, परंतु बेचारी शकु पर क्रुद्ध होते हैं क्या? सोच तो उस कोमल कन्या को कितना बुरा लगा होगा। तभी मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। बस आंसू देखते ही बाबा ने मुझे अपने पास खींच लिया और सिर पर हाथ फेरकर मुझे आश्वस्त किया। परंतु भागु आका को उन्होंने कहा, मुझे जब इसे मारने का अधिकार नहीं है तो फिर बोलने का अधिकार कैसे हो सकता है?
आत्मवस्तु कामाया सर्व प्रियम भवति, आत्मा के नाते से ही सभी प्रिय होते। सन 1921 में श्री रामबाबू रानाडे बहुत अधिक बीमार हो गए और उनके स्वास्थ्य की स्थिति चिंताजनक हो गई। उस समय वे इंस्पेरे में ही आकर रहने लग गए थे। एक दिन श्री बाबा श्री रामबाव और रा गणपतराव कारखाने इकट्ठे बैठे थे। तब श्री रामबाव के स्वास्थ्य विषय चर्चा थी, श्री बाबा और श्री रामबाव के बीच होने लगी। श्री रामबाव का स्वास्थ्य इतना अधिक बिगड़ा हुआ देखकर श्री बाबा का हृदय भर आया और उनकी आंखों में आंसू आ गए। और यही स्थिति श्री रामबाव और रा गणपतराव की भी हो गई। इसके बाद थोड़े दिन व्यतीत हो जाने पर इस प्रसंग की चर्चा करते हुए श्री बाबा ने कहा, रामराया के स्वास्थ्य की दशा देखकर मुझे व उनको दोनों को ही रोना आ गया और हम लोगों को रोते देखकर गणपतराव भी रोने लगा। परंतु हम क्यों रोए थे उसकी समझ में आया नहीं। हम दोनों के व उनके रोने का कारण एक नहीं था। रामराया जैसे विद्वान और महान साधक भक्ति का विस्तार करने के लिए अत्यंत उपयोगी होंगे, इसलिए देव उनको दीर्घायु बनाए ऐसा मुझे लगता था, और इसी कारण उन्हें इतना बीमार देखकर मुझे दुख हुआ। दूसरी ओर रामराया को लगा कि यदि परमेश्वर आयु दे तो महाराज की सेवा करना संभव हो जाएगा, अन्यथा उस सेवा से मैं वंचित रह जाऊंगा, और इसलिए उनको भी खिन्नता हुई। गणपतराव का रामराया के देह पर प्रेम होने से वह जीव भाव से रोया, हमारी तरह से देव के लिए शिव भाव से नहीं रोया।
ये भक्ति नवम नाम जिसका आत्मनिवेदन, देव को करो समर्पण, अपने को ही स्वयं विराम। मैं हूँ भक्त ऐसे कहना, विभक्त रह के भजन करना, यह एक समझना है विलक्षण लक्षण और विलक्षण ज्ञान और अज्ञान वैसे भक्त और विभक्तपण है परस्पर विरुद्ध राम जब है भक्त तो विभक्त कैसा जब हो विभक्त तो भक्त कैसा बिना तत्व विचारणा समाधान कैसे तस्मात करो तत्व विवरण पहचानो देव कौन कौन हो तुम इसका शोधन करो अंतर्याम मैं कौन हूँ ऐसा विचार करते करते उड़ जाए असार पंचों का भी नाश होगा तब रहे कौन राम होवे जब तत्व में तत्व कालय कहाँ रहे अहम इति ब्रह्म इसी प्रकार आत्मनिवेदन सज ही होगा राम भासे पंच तत्वों का विस्तार किंतु विचारांत होता नाश होगा जब प्रकृति निराश रहे आत्मा न अहम राम एक मुख्य परमेश्वर दूसरी प्रकृति जगदाकार वहां कहां से आ जाए चोर अहम रूप जीव ऐसा ही है जब सिद्धांत मिथ्या होगा देह अहंकार नाना व्यक्ति पिंड ब्रह्मांड है केवल तत्व विस्तार राम मैं हूँ साक्षी ऐसे ज्ञान होते ही पंच तत्व भिन्न साक्षित्व ही जब होवे लीन तब रहे आद्यंत आत्मा राम आत्मा एक स्वानंद घन आत्मा ये स्तुति वचन तब हम और आत्मा भिन्न है ही नाही राम तो हम अहम शह ऐसे वचन इसके अर्थ का करो चिंतन तो समझ में आवे हैं अभिन्न अहम जीव श आत्मा है आत्मा निर्गुण निरंजन इसके साथ हो अनन्य जब तुम नाही उनसे अन्य तो कैसे आवे अहम भाव आत्मा केवल अद्वैत नाही वो द्वैताद्वैत वहाँ अहम भाव का दर्शन होगा ही नहीं आत्मा परिपूर्ण संपूर्ण जहाँ नाही गुण अवगुण आत्मा निश्चल निर्गुण वहाँ कैसे अहम भाव बिना तत्पद त्वं पद अशिपद जब तीनों होंगे एक रूप वस्तु भेदातीत तो रहे ना अहम भाव राम होवे स्वरूप में दृढ़ बुद्धि तो नाशे जीव शिव उपाधि जब होगी नाही भेद बुद्धि तो कहां से आवे अहम भाव राम मैं हूँ मिथ्या देव सत्य देव भक्तों में अनन्य भाव इन वचनों का अभिप्राय जानते हैं संत ऐसी स्थिति का जो अनुभव उसी का नाम आत्मनिवेदन उससे होता है समाधान ज्ञानियों को पंचभूतों में जैसे आकाश, सकल देवों में जैसे जगदीश, ऐसे न विद्या भक्ति में विशेष है आत्मनिवेदन किरण। नवमी भक्ति आत्मनिवेदन, न हो तो न टले जन्म मरण, है ये वचन सत्य अन्यथा नाही किरण। ऐसी न विद्या भक्ति करे जो पावे सायुज्य मुक्ति, कल्पांत में सायुज्य मुक्ति पावे नाही नाश किरण। सलोकता समीपता स्वरूपता और चौथी सायुज्य मुक्तता, है नाश तीनों मुक्ति का सायुज्य मुक्ति अविनाश किरण। ये चारों मुक्ति मानव पावे भगवद भजन के आधार, यदि निरूपण श्रोता जन सुनिए आगे सिनाम। श्रीदास बोधे गुरु शिष्य संवादे आत्मनिवेदन भक्ति नाम समास दूंगा सिनाम। तुम्हारा की आज्ञा हुई लोगों के लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। गुरु महाराज ने हमें उत्तर दिया है, ये हमारी भक्ति है। तो महाराज कहते थे कि बाबा आपको सदगुरु से नाम मंत्र जब मिल जाता है उसी समय मुक्ति हो जाती है। और महाराज की इतनी दया है, प्रत्येक जो उनके पास आया है उनको परमेश्वर का नाम दिया। परमेश्वर का नाम महाराज कहते थे कि स्वयं सद्गुरु को परमेश्वर देता है और वह शिष्य को दे देते। तो सद्गुरु से प्रदत्त जो नाम हमें मिला है वह स्वयं सद्गुरु ही है। हम किसी प्रकार का मन में यह बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए कि मुझे तो कुछ मिला ही नहीं। अरे सद्गुरु का नाम ही सद्गुरु ही मिल गया साक्षात, यानी सद्गुरु यानी परमेश्वर ही आपको दे दिया कि लो ये परमेश्वर आपको दे। अब आवश्यकता इतनी है कि उसको महाराज कहते थे अत्यंत आदर प्रेम से उस सद्गुरु दत्त नाम को आप स्मरण करना, और सब छूट है एकदम फ्री है हमारे लिए। किसी प्रकार का बालक हो बालिका हो लेडीज हो दत्त हो यस हो
सबके
यानी प्रेम से उस नाम का स्मरण करना है। सारा काम करते हुए खाते पीते हुए सारा दे रखा है, सोते खाते पढ़ते टीवी देखते, मैं तो कहता हूँ टीवी देख रहे हो उस समय भी नाम स्मरण। तो उस और नाम स्मरण उससे प्रेम जब हो जाएगा तो सद्गुरु से प्रेम हो जाएगा, तो धीरे धीरे उस नाम से रूप प्रकट होता है जिसको महाराज वस्तु करते हैं। और महाराज ने तो छोटे छोटे बालकों पर इतनी दया की है, सब आने वाले सबका अनुभव, मैं कोई नई बात नहीं कह रहा, हर बालक को अनुभव दिया है। तो वस्तु दर्शन यानी उस नाम से वो रूप प्रकट होता है, परमेश्वर अंदर जो है वो बाहर। जब सामने रूप आ जाता है परमेश्वर का और आपका नाम स्मरण चल रहा है, तो भरत कहते थे ये आपकी ज्ञान युक्त भक्ति हो रही है, ज्ञान युक्त भक्ति हो रही है। धीरे 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 महाराज की दया से उस रूप के प्रति नाम के प्रति इतना प्रेम हो जाता है तो वो कभी जाता ही नहीं। आपके सामने रहता हर समय सामने, कुछ भी करो कैसा भी काम, पानी में देखो तो उसमें, रोटी बना रहे तो उसमें, किताब पढ़ रहे तो अक्षर अक्षर में परमेश्वर का रूप सब ऐसा आरती में और के सुझाव और जैसे जैसे आपकी युक्ति बढ़ती है जैसे कहते थे कि उसमें ही उस रूप में ही आकार आता है, यानी उसमें अंगों का निर्माण होता है, जैसे एक माँ के पेट में बालक कैसे बढ़ता है गर्भावस्था में, पहले एक कोष होता है।